संगति के लिए आकर्षण तत एवा केवल वह आराम भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए। वदा कृपा करके कहें मन से आप उचित समझते हैं चेता यदि अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु शुक्रदेव गोस्वामी भगवान के अवतार द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को स्वभावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मय तत्क्षण भूल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भवबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावना प्रति का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य जैसा कि प्रेम विवाद में कहा गया है कृष्ण बैरमुख है या भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया असन्नपि क्लेशद आसदेह। जब तक हमारी ये नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अधिभौतिक तथा आदिदैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवणम कीर्तनम के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रुण्वतां सो कथा कृष्ण श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं वे सभी अद्भुत हैं अतएव वे हमारे उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं किंतु मत्स्य कुर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता इसलिए ये हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीला है जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाले थे विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना तृणावर तथा शक्तासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदर श्रद्धा तथा साधु संग्रह। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने क्योंकि ये लीला है मत्स्य कुर्म वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। शुकदेव गोस्वामी से अधिक अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिक अधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशां श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांशं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रृण्वतोऽप्यरति वितृष्णा सत्त्वं च शुद्धाति चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हरं वद मन्यसे च। तो जन्माष्टमी नजदीक है तो हम वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हर रोज। तो जन्माष्टमी का प्रिपरेशन करने का मतलब ही है अपने हृदय की तैयारी करना। कृष्ण को हम रिसीव करने वाले हैं तो ऐसे कृष्ण सारे जीवों के वास्तविक सुहृद हैं। हम भगवान स्वयं कहते भगवद गीता में भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति कि मैं वास्तव में सारे जीवों का सबसे करीब मित्र हो या सुहृद हो वेल विशर हो। अरे तभी संभव होगा जानना जब हम भगवान के जो कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए किया था। तो ऐसे भगवान हृदय रूपी देश में निवास करते हैं। अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन मैं हृदय रूपी देश में निवास करता हूँ। और वास्तव में भगवान चाहते हैं हर एक के हृदय में निवास करना लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपना ये जो हृदय है जिसको निर्मल बनाएं जिसको तैयार करें कि ऐसे जो कृष्ण है आकर निवास कर सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत में कहते हैं तथापि हमारा मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ अपना शरण। तो वास्तव में कृष्ण एक ही स्थान में उदित होते हैं और वो स्थान क्या है वृंदावन है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखती हैं तो वो कहती है कि हे कृष्ण बाकी लोगों का मन और हृदय अलग हो सकता है लेकिन मेरा मन और हृदय क्या है एक ही है और वो हृदय और मन मोरा मन वृंदावन वो कहती हैं कि मेरा जो मन है वो वृंदावन है और उस वृंदावन रूपी हृदय या मन में आप अपने जो चरण है उसको उदित कीजिए। और कृष्ण भी अपने भक्त के हृदय में स्थित होना उनको बहुत अच्छा लगता है। भगवान स्वयं बंधना चाहते हैं ऐसे नहीं कि भगवान बल्कि भक्त के हृदय में रहना चाहते हैं निवास करना चाहते हैं और भक्त के हृदय में भगवत सेवा के रूप लिए जो भावनाएं हैं उसका आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम हरि है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हरि का मतलब क्या है पापम दुखम चित्तश यथा यथा हरति इति हरि। जो हमारे हृदय के पाप हैं, कलमश हैं, उनको जो या दुख आदि है उनको हरण करते हैं वो हरि हैं, और उसके अलावा भी हमारे चित्त को भी जो हरण करते हैं उनको हरि कहा गया है। इसलिए अष्टकम है चौराग्रगण्य अष्टकम, जो चोरों में अग्रगणी है, श्रेष्ठ है, ऐसे कृष्ण है। तो ऐसे कृष्ण का वर्णन करते हुए आचार्य गण कहते हैं शिलाधिकायादयश्च चौरम नवामुदश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यां पुरुषं नमामि। वो कहते हैं कि ऐसे जो चोरों में जो अग्रगणी है, श्रेष्ठ है, ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या क्या वो चोरी करते हैं उसमें तो कई सारे चीजों का वर्णन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं श्री राधिकाया हृदयश्च चौरम, ऐसे कृष्ण श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराते हैं। और वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, नवाम्बुद अम्बुद का मतलब है कि जो बादल है, तो नया जो बादल जल की वर्षा करने से पहले आकाश में प्रकट होता है, तो उसकी जो कांति है श्यामल वर्ण की होती है। तो आचार्य कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ऐसे मेघ की कांति को चोरी कर लिया है। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, और उसके अलावा कृष्ण के चरण कमल पदों का जो आश्रय लेता है उसके सारे समस्त कलमश आदि को वो चोरी कर लेते हैं। तो वास्तव में कृष्ण अत्यधिक अनुभव करते हैं चोरी करने के लिए। इसलिए कृष्ण अपने माता यशोदा के घर में बने हुए व्यंजन आदि को खाने में इतना अधिक आनंद महसूस कर रहे थे, बल्कि वो अत्यधिक आनंद महसूस होता था जब बाकी जो गोपिकाएं हैं, कलावती है, प्रभावती है और बहुत सारी गोपिकाएं हैं, उनके घरों में जाकर कृष्ण माखन दूध दही आदि को वो चुराते थे। तो इसी प्रकार से ये जो कृष्ण कथा है ये बेस्ट विधि है, किस लिए? हमारे हृदय को तैयार करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम की महिमा जहां जहां वर्णित की है वहां सुत गोस्वामी, परीक्षित महाराज, शुकदेव गोस्वामी सब इसी बात पर जोर डालते हैं। शुन्वतः सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ही अभद्राणि विधुक्ति सुरुत्सताम, कि क्या करो, ये जो कृष्ण कथा है ये बहुत सरल विधि है। वास्तव में जगत में सबसे बुद्धिमान कोई है तो वो परीक्षित महाराज है। मृत्यु के समय में उन्होंने परफेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी चीज को चुना तो वो था कृष्ण के बारे में नित्य रूप से श्रवण करना। तो ऐसी कृष्ण कथा का हमें वर्णन भी करना चाहिए और उसको सुनना भी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि कृष्ण कथा सुननी चाहिए, लेकिन हम कृष्ण कथा का वर्णन ही नहीं करते। इसलिए परीक्षित महाराज ने जैसे ही उतना लीला को सुना, उनका कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों को सुनने के लिए और लालसा बढ़ गई। बल्कि इसके पहले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि है परीक्षित, अभी 3-4 दिन हो गए हैं, तुम अभी थोड़े थक गए होंगे, दशम स्कंद ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने एक एक स्कंद सुनाना शुरू किया, कि अभी 8वां स्कंद खत्म हो गया है परीक्षित, ध्यान रखो हम 9वें स्कंद में जा रहे हैं। नहीं, वो तो नेचुरल फ्लो, क्योंकि जितना भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति महान वैष्णव के हृदय में होती है तो उसका जो हृदय है कृष्ण कथा से भर उठता है। और जिस प्रकार से समंदर में लहरें अनवरत एक के बाद एक बाहर निकलती हैं, उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा से बराबर हृदय लहरों के भांति कृष्ण का वर्णन करने में रुकता नहीं है, एक के बाद एक कृष्ण की महिमा का वर्णन करते जाता है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी है, और उसके लिए परीक्षित महाराज भी उतने ही उत्साहित, उतने ही लालायित थे। तो शुकदेव गोस्वामी उनको सुनाते जा रहे थे और उनको कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा विश्राम करो। उनके लिए नहीं नहीं नहीं, आप क्या करो, कृष्ण कथा ये मेडिसिन है, उसको सुनाते जाओ, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, सारे हृदय के अभद्रों को दूर करने वाली है। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे और पूतना लीला का उन्होंने वर्णन किया, तो उसको सुनकर परीक्षित महाराज को आगे कृष्ण लीला को सुनने के लिए क्या हो गया, इतना अधिक उत्साह बढ़ गया। उन्होंने कहा ये जो श्लोक है ये परीक्षित महाराज ही बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा एन एनावतारेण भगवान हरेश्वरा करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च प्रभो। हे प्रभु शुक्रदेव गोस्वामी, कृष्ण के जो कार्यकलाप है कान को और मन को बहुत अधिक आनंद देने वाले हैं, इनको आप मुझे सुनाते जाओ। तो वास्तव में ये जो परीक्षित महाराज हैं हमको वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के कार्य सुनने की लालसा को प्रकट कर रहे हैं शुक्रदेव गोस्वामी के बाद शुक्रदेव गोस्वामी के पास। और ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी इसका वर्णन करने के लिए उतने ही उत्साहित हैं जितना परीक्षित महाराज सुनने के लिए उत्साहित हैं। तो परीक्षित महाराज इस श्लोक में क्योंकि आपको आगे तीन लीलाओं को सुनने जा रहे हैं, ये जो सातवां अध्याय है उसमें भगवान की तीन ऐश्वर्यमय लीलाओं का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी ने किया है। एक तो है शब्दासुर का वध, दूसरा है तृणावर और तीसरा है जब माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी तो उसके मुख में सारा ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है। तो ऐसे ऐश्वर्यमय लीलाओं को एक प्रकार से सुनने जा रहे थे, क्योंकि ऐश्वर्यमय क्यों है, क्योंकि कृष्ण तो अभी बहुत छोटे से बालक है और वो बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने पूतना के बारे में जब सुना कि 6 दिन के बच्चे ने या बालक ने कृष्ण ने इतना अद्भुत कार्य कर लिया, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज आगे बढ़ो और इनका वर्णन करते जाओ, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने से उन्होंने कहा 6 चीजें आती हैं एक श्रोता के जीवन में। सबसे पहले वो क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, यह सुनवता अपैति अरति। अरति का मतलब है पहली चीज है अरति, कि भगवान के बारे में कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने से क्या होगा, अरति उत्पन्न होगी। एक होता है रति, रति का मतलब है अटैचमेंट, आकर्षण, तीव्र अनुराग। तो जब भगवान की इन लीलाओं को कोई सुनेगा तो उस व्यक्ति का अरति भौतिक आकर्षण खत्म हो जाएगा, अनाकर्षण जिसको प्रभुपाद ने लिखा है, अरति रति नहीं होगी, भौतिक विषयों को सुनने में उसकी कोई आसक्ति नहीं होगी और जो भौतिक विषय आदि है उसको कड़वे लगने लगेंगे। हाँ, उसका मन उसका हृदय उन विषयों के प्रति भागेगा नहीं। हाँ, और इस प्रकार की जो अरति है संसार के प्रति भोग के लिए उसके हृदय में आकर्षण नहीं रहेगा। और दूसरी चीज क्या कहते हैं वो, वितृष्णा। हाँ, जो तृष्णा है हमारे हृदय में इंद्रिय भोग के लिए बहुत अधिक तृष्णा है, तो वो क्या हो जाएगा, अतृष्णा हो जाएगी। लोग इंद्रिय भोग के लिए नाना प्रकार के इंद्रियों का तर्पण करने के लिए हम सब प्यासे हैं, इसको कहते हैं इंद्रियों का तोषण करना। और इंद्रियों की प्यास इतनी प्रबल है जिसको शास्त्र कहते हैं अतोषणीय प्यास। अतोषणीय प्यास का मतलब है कि ऐसी प्यास जो कभी तुष्ट नहीं होगी, ऐसी इंद्रियों के अंदर प्यास है। तो वो परीक्षित महाराज कहते हैं कि श्रवणम का सेकंड इफेक्ट क्या है, वितृष्णा। और तीसरा वो कहते हैं सत्वम, जैसे व्यक्ति सुनने लगता है उसी क्षण तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयाशये, कि तुरंत ही वो व्यक्ति के उस व्यक्ति के हृदय में काम और लोभ आदि है जो रजगुण के प्रतिनिधि है या रजगुण उनसे उत्पन्न होता है, तो वो खत्म हो जाएगा, तुरंत ही वो व्यक्ति सत्व गुण के धरातल पर स्थित हो जाएगा। चौथी चीज, हाँ, परीक्षित महाराज कहते कि आप जो कृष्ण लीलाओं को सुनाने जा रहे हो उससे क्या होगा, शुद्धति। शुद्धति, शुद्धति का मतलब है तुरंत ही हृदय कल्मषों से रहित हो जाएगा और शुद्ध हो जाऊंगा। और इस पांचवी चीज, हाँ, वो कहते हैं परीक्षित महाराज सत्वम च शुद्ध्याति चिरेण पुंसा
भक्ति हरो या हरो भक्ति, जो हरि है उसके प्रति निष्ठा की जो भक्ति है उस भक्त के हृदय में स्थापित हो जाएगी। भक्ति हरो, इतना ही नहीं, भक्ति हरो तत् पुरुषं च सख्यः, जिनका भक्ति या जिनका जिनका बहुत अधिक प्रेम कृष्ण के लिए है, ऐसे भक्तों के साथ क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। भक्तों के प्रति हमारे हृदय में अटैचमेंट, आसक्ति और प्रेम का जो संबंध है वो स्थापित हो जाएगा, और ऐसे भक्त संग को छोड़ने के लिए हम कभी भी ये नहीं, हमारे हृदय में कभी भी वो विचार आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से इन लीलाओं को सुनने से पहले परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को इन चीजों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो कृष्ण लीलाएं हैं ये शक्तिशाली हैं, जिनको सुनने मात्र से व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के जो सार है उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में वर्णन करते हुए वृंदावन का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं वृंदावन भूमि क्या है, सर्वकाल सुखावह। वृंदावन को उन्होंने दो शब्दों में बोल दिया कि वृंदावन का जो वातावरण है वो सर्वकाल सुखावह, सारे समय में क्या है, सुख प्रदान करने वाला है। और यही वास्तव में आध्यात्मिक जगत है, जिसको आप कहते हैं वैकुंठ, कि वैकुंठ जो कुंठा से रहित है उसी को शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि ये जो वृंदावन सर्वकाल सुखावह क्यों है, क्योंकि वहां कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, और जहां कृष्ण आते हैं तो वो जो भूमि है केवल आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। तो गोपिकाएं अपने विरह गीत में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, वो कहते कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, कि जय हो, किसकी जय हो, कि जहां जन्म लिया है, जन्मना व्रजा कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया है, शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, कि जहां ये लक्ष्मी देवी है स्वयं रूप से प्रकट हो गई है ब्रज में कृष्ण की, और जो ब्रजवासी हैं उनकी सेवा करने के लिए। दैत दृश्यता दीक्षतावकाश स्वयं दृता सवास ते विचिन्मते, वो कहते हैं कि हम आपके विरह में रो रहे हैं, आपको देखने के लिए हम लालायित हो रही हैं। दैत दृश्यता, क्योंकि आपके चरण इस ब्रज भूमि में पड़े हैं, ये आपने ब्रज में जन्म लिया है, जिसके कारण सारे जो लक्ष्मी है वो सेवा के लिए ब्रज के सदैव तत्पर हो गए हैं। इसलिए कृष्ण का जो प्राकट्य है वो यही है कि सारे जो जीव है कृष्ण के प्राकट्य के कारण सुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए वास्तव में नंद महाराज के घर में कृष्ण ने जन्म लिया है तो उसको जनरली लोग कहते हैं नंद के घर आनंद भयो, है ना। वास्तव में नंद महाराज के घर में आनंद ने जन्म लिया है, और कृष्ण का एक नाम है आनंद घन मूर्ति। मूर्ति कैसे है, कृष्ण आनंद से परिपूर्ण है, तो जो भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है वो तुरंत ही दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए कृष्ण का कोई और बिजनेस नहीं है, हमारे महान महान आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का एक ही बिजनेस है, एक ही कार्य है, और वो क्या है, आनंद वर्धन। इसलिए भक्तिरोन ठाकुर ने कहा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुलश्वर योजक काम गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुणगन धाम। तो भक्तिरोन ठाकुर कहते हैं कृष्ण का तो एक ही कार्य है आनंद वर्धन, या तो वो अपने नाम के द्वारा, जैसे हम सभी गाते हैं शिक्षा स्तकम में आनंदावरि वर्धनम, तो उसी प्रकार से कृष्ण सारे आनंद का वर्धन करने वाले हैं, और इसलिए कृष्ण को कहा जाता है आनंद लीला मय विग्रहाय, कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं या उनका जो विग्रह है वो आनंद से परिपूर्ण है, यह आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए कार्तिक में जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा हम दामोदर स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, तो सत्यव्रत मुनि अब उसमें कहते हैं इति दृक्स्वलीला भिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जान्तम आख्यापयन्तम, कि कृष्ण का यही बिजनेस है ब्रज में, इन लीलाओं को प्रकट करने के पीछे कृष्ण का एक ही उद्देश्य क्या है, यति द्रक्सो लीला भी आनंद कुंडे, आनंद का जो कुंड है, जलाशय है, सरोवर है, उसमें क्या करते हैं, सो घोषम, ब्रजवासियों के लिए शब्द है सो घोषम, सारे जो ब्रजवासी हैं सो घोषम निमज्जन्तम, उनको निमग्न कर डालते हैं अपने दिव्य लीलाओं में। तो वास्तव में कृष्ण के कार्यकलाप या कृष्ण का जो असली कार्य है वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, और वो आनंद कैसे देते हैं, अपने लीलाओं के द्वारा। इसलिए कृष्णदास कविराज ने भगवान के आने का प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कृष्ण का एक ही उद्देश्य है भक्त सुख देते, कि कृष्ण आते ही हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। इसलिए कृष्ण बहुत कॉन्शियस है, हम कृष्ण कॉन्शियस है या नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या है, हमेशा भक्त कॉन्शियसनेस है उनका, हम भक्त कॉन्शियस है, डिवोटी कॉन्शियस, हमें पता नहीं हमारा कृष्ण कॉन्शियस कब हो जाएंगे हम, लेकिन कृष्ण सदैव अपने भक्त की चेतना में मग्न रहते हैं। तो ऐसा जो ब्रज है कृष्ण के दिव्य लीला चरित्र आदि से भरा हुआ है, और जिन लीलाओं को हमें सुनने के लिए सदैव उत्साहित होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि हमें अपना जो आकर्षण है श्याम सुंदर कृष्ण त्रिभंग ललित रूप जो ब्रजेंद्र नंदन है उनके प्रति विकसित करना चाहिए। कैसे विकसित होगा, प्रभुपाद ने इसलिए कृष्ण बुक दिया है, कृष्ण के कार्यकलापों को हम नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो जो पर्सन है उनके जो प्रमुख कार्यकलाप है उसके प्रति एक प्रकार का अनुराग हम विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीव गोस्वामी आदि हमें वर्णन करते हैं कि हियरिंग का अलग अलग जो स्तर है, शुरुआत में हम अलग अलग चीजें सुनते हैं, साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, परम भगवान जो कृष्ण है जिनका वर्णन कृष्ण मुख में श्री प्रभुपाद ने किया है उन लीलाओं को भी हमें सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कृष्ण जो पर्सन है उनके प्रति एक विशेष प्रकार का अनुराग हमारा विकसित होगा, और उन लीलाओं के पीछे जो तत्व विचार है या लीला विचार है उसको भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आज इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को तीन आसुरों का या तीन लीलाओं का वर्णन करते हैं, और उनमें सर्वप्रथम वो वर्णन करते हैं शक्तासुर का, शक्तासुर। तो ये जो आसुर हैं आप हर बार आपने सुना होगा इस कृष्ण लीला के लेक्चर्स में कि हर जो आसुर है वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अभी पूतना का मत, पूतना एक मिथ्या गुरु इस अनर्थ को या इस प्रकार की विचारधारा को प्रस्तुत करता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना जो ग्रंथ है चैतन्य शिक्षामृत उसमें सारे असुरों का वर्णन किया है, और इन असुरों का वर्णन करते हुए है उन्होंने ये हर एक असुर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कौन सा अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है उसका भी वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिक्वेंस आसुरों को मारने का कृष्ण का सीक्वेंस क्या है, क्यों एक के बाद तीन इन आसुरों को मारा गया। तो इस प्रकार से ये जो आसुर जो आसुरी आसुरों का जो वध आदि है उनको हम जब सुनते हैं तो हम अपने हृदय के जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको वास्तव में कृष्ण की सहायता से दूर करते हैं। तो कोई कह सकता है जैसे कई बार लोग टेम्पल आते हैं तो कई बार उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता तो कहते हैं कि यहाँ भी आसुरी लोग रहते शायद, कि मैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति से मिला, मंदिर में रहकर भी ये आसुरी कैसे हैं। तो वास्तव में वैकुंठ में आसुर नहीं होते, आसुर कहाँ होते हैं, वृंदावन में। और कोई कह सकता है जैसे पूतना गई थी ब्रज में, लेकिन प्रभुपाद या शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ कृष्ण नाम का वर्णन हो रहा है, जहाँ कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है, जहाँ शंख ध्वनि आदि हो रही है, वह भीड़ भूत पिशाच और ये जो आसुरी चीजें हैं वो कैसे घुस सकती हैं,
वो ठहर नहीं सकती, लेकिन वास्तव में कृष्ण की जो लीला शक्ति है वो कृष्ण के इच्छा को जानकर इन आसुरों को भेजती है। और वैसे देखा जाए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, वहां ये दो लीलाएं नहीं होती। कौन सी दो लीलाएं? एक तो कृष्ण वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते गोलोक वृंदावन में, और दूसरा क्या है, वहां आसुरों का वध ये कार्यकलाप नहीं होते। तो भगवान उसको करने के लिए और उस विशेष लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए कृष्ण ये जगत में अपने वृंदावन को लेके आते हैं। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, वही वृंदावन कृष्ण अपने लीलाओं को प्रकट करने के लिए जगत में लाते हैं, तो उसको गोकुल वृंदावन या फिर भौम वृंदावन कहा जाता है। और ये दो लीला आसुरों का वध और ब्रज से बाहर जाना, ये कृष्ण केवल इस भौम वृंदावन में प्रकट करते हैं। इस प्रकार से कृष्ण आसुरों को मारते हैं, उसी प्रकार से हम आसुरी भावना का भी वध कृष्ण के इससे कर सकते हैं, सहायता से कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण की जो गोलोक वृंदावन की लीलाएं हैं उनको नित्य लीला कहा जाता है, और कृष्ण जब इस भौम वृंदावन में आकर लीलाएं करते हैं उनको नैमित्तिक लीलाएं कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये सब ब्रज से बाहर जाना, उसमें आसुरों का वध आदि करना, ये सब लीलाएं उसमें शामिल है। तो ऐसे परम भगवान कृष्ण बहुत छोटे से बालक ही थे, क्योंकि 6 दिन के जब थे तो उन्होंने आसुरनी का वध किया, किनका, पूतना का। और कृष्ण अभी एक करवट बदल ही रहे थे, कुछ महीने के हो गए थे। जिस दिन यशोदा माता ने देखा कि अभी करवट बदल रहा है तो उसका भी एक संस्कार है, उसको कहते उत्थान संस्कार। हाँ, जो 12 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भाधान संस्कार, जन्म आदि के संस्कार हैं, फिर विवाह संस्कार आदि हैं, फिर अंतिम संस्कार है। हाँ, तो ये उत्थान संस्कार है, जब बच्चा करवट बदलता है तो फिर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यशोदा माता ने देखा कि मेरा जो बालक है अभी करवट बदल रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, सारे ब्राह्मणों को, डिवोटीज को, वैष्णवों को इनवाइट किया। और फिर क्या किया उन्होंने, कृष्ण का ही गुणगान, परम भगवान के कार्यकलापों को गान करना, कीर्तन करना, उसका श्रवण करना, ये सब हो रहा था। और तब देखा कि कृष्ण जो छोटा सा बालक है वो बहुत थक गया है, उसको नींद आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उनको उठाकर एक जो आंगन में ही जो छकड़ा है, छकड़ा ही कहते ना उसके अंदर, शकट भी कहा गया है कृष्ण भोग में, तो जो छकड़ा है बैलगाड़ी जैसे होता है छोटा सा, घर के लिए यूज करते हैं उसको, तो उसके नीचे का जो भाग है, पोर्शन है, जैसे आपने देखा होगा गांव में या जो लोग रोड का काम करते हैं तो बच्चे को कहां छोटे से झोले में टांग के रखते हैं, तो उसी प्रकार से उस छकड़े के नीचे के भाग में एक झोली जैसा था जिसमें कृष्ण को माता यशोदा ने रखा, और कृष्ण गहरी नींद में सो गए। तो कृष्ण जब सो गए और कुछ एक समय के बाद वो उठ गए, जैसे उठे भगवान को बहुत अधिक भूख लगी थी, और उस भूख के कारण कृष्ण बहुत जोर जोर से रोने लगे, लेकिन आवाज कौन सुनेगा उनको, क्योंकि बहुत सारा कीर्तन हो रहा है, सब फेस्टिवल के कार्यकलाप हो रहे हैं, तो कोई कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कृष्ण अकेले थे और हर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बिजी हो गया था, कृष्ण के लिए बिजी हो गए थे सारे। तो लेकिन उस समय कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे और कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से के कारण उन्होंने क्या किया, आपने जो लात है, पाद प्रहार, जो चरण कमल है उसका प्रहार उस छकड़े के ऊपर किया। जैसे उन्होंने किया, लेटे लेटे हैं तो जो छकड़ा है वो टूट जाता है पूर्ण रूप में, उसके ऊपर बड़े बड़े भारी बर्तन रखे गए थे, वो सारे बर्तन आगे गिर जाते हैं, दोनों जो पहिया है वो अलग हो जाते हैं, कृष्ण भी गिर जाते हैं। तो ये इस चीज का आवाज बर्तनों के जोर जोर से आवाज सुनकर नंद महाराज, यशोदा, सारे ब्रजवासी वहां भागते हैं। तो ये जो छकड़ा है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि छकड़ा कौन था? शकटासुर था। शकटासुर जो बिना देह का एक आसुर था, क्योंकि पूर्व जन्म में गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं कि पूर्व जन्म में ये जो शकटासुर है, ये हिरण्यकश्यपु का पुत्र था उत्कच, और ये हिरण्यकश्यपु के वैसा ही बहुत अधिक घमंडित, अहंकारवादी था, और उसका शरीर बहुत बड़ा था। जहां भी चलेगा, पेड़ पौधे घर बीच में आ जाए, उसको तोड़ते हुए चलेगा। तो एक बार जो लोमस ऋषि है, लोमस जिनके शरीर में बहुत सारे रोम है या बाल है, शरीर भरा हुआ है, तो ऐसे लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये सदैव ही जाता है, तो इतने सारे पेड़ पौधे कुटिया सब तोड़ते हुए जाता है, हाँ किसी को देखता नहीं, इतना विशाल है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको शाप दिया, कहा तुम्हारा इतना भारी शरीर है, तुम्हारा शरीर वायु के समान हल्का हो जाए, हाँ तो कोई शरीर ही नहीं है, भूत प्रेत के पास कोई शरीर नहीं होता, वो दूसरे के शरीर को इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही ये जो आसुर था उत्कर्ष, हाँ उनके पास शरीर नहीं था, वो क्षमा याचना करने लगे उनके पास, लोमस ऋषि के पास, और उन्होंने कहा कि कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और वास्तव में कृष्ण लीला में कृष्ण की सेवा करने का उनके मौका मिला, तो वहां कृष्ण ने जो शकट के रूप में वो आसुर था, भगवान जानते थे कि कंस के द्वारा भेजा हुआ ये आसुर है मारने के लिए, तो इन्होंने सोचा क्या रूप धारण करो, तो उन्होंने शकट बने कि ये सारे बर्तन आदि के से गिर जाएंगे तो ये जो छोटा बालक है वो तुरंत ही मर सकता है। लेकिन कृष्ण ने जैसे अपना छोटा सा पाल प्रहार किया, वैसे वो शकट जो आसुर है शक्तासुर, उसका वध हो जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इससे हम देखते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी जितने भी अवतार आदि हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो अपने शरीर को बढ़ाते कम करते कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन यहां जैसे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह देव बहुत विशाल रूप में प्रकट हो गए थे, बड़े स्तंभ से उनको अपना रूप को बहुत बड़ा करना पड़ा, और वामन देव के रूप में वही भगवान आते हैं, उनको तीन पर भूमि लेना है तो बड़ा बड़े बड़े पांव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण ने अपना एक छोटा सा जो चरण है उसको क्या नहीं किया, थोड़ा भी नहीं बढ़ाया, उतनी ही मात्रा में, और उनके द्वारा उन्होंने उस आसुर का वध किया। तो भगवान कृष्ण जो वृंदावन में है, जो वास्तव में कृष्ण का स्वयं वपु है, जैसे कहते ना स्वयं रूप, हाँ परम भगवान का, वैसे ही वो उनका स्वयं वपु है, उस स्वयं वपु में वो कुछ और करते नहीं है, बढ़ाते नहीं है आसुर आदि का वध करने के लिए। तो सारे जो ब्रजवासी इकट्ठा हुए देखने लगे, आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि ये क्या हुआ है, यशोदा माता बहुत जोर से रोने लगी, पर उन्होंने अपने बालक को उठाया, हाँ गोद में लिया, और सब लोग चर्चा कर रहे थे ये सब लीलाओं का। तो इस प्रकार से भगवान शकटासुर का वध करते हैं, और वास्तव में वृंदावन में कृष्ण कुछ आसुरों का वध करने के लिए शस्त्र अस्त्र नहीं उठाते, पहले जो आसुर थे उसको अपने होठों के द्वारा मार दिया है कि नहीं, शरीर के कोमल कोमल अंगों का इस्तेमाल करके आसुरों का वध कर दिया। अभी होठों से कोई मर सकता है? इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने होठों का स्पर्श क्या नहीं किया, तो उससे बड़ी भयावह आसुरी वो मर गई। और यहाँ आगे हम सुनेंगे त्रिलोक, हमने चरण कमल से, चरण कमल छोटे से बच्चा पाँव मारता है, जैसे व्यक्ति हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा थप्पड़ मारे पिता को गोद में बैठा है तो बड़ा अच्छा लगता है, कितना आनंद महसूस होता है, कितने वही आनंद है लाइफ में, बच्चा थप्पड़ मारे थोड़ा सा पाँव मारे, लेकिन वही बच्चा 20 साल का हो जाए तब थप्पड़ मारे तो फिर असहनीय है। तो कृष्ण अपने छोटे से चरण कमल से प्रहार करते हैं, तो उससे आसुर का वध हो जाता है। इसी प्रकार से कृष्णा अपने अंगों के द्वारा जो बहुत अधिक कोमल है, कमल से जिनकी तुलना की गई है, उनके द्वारा सारे असुरों का वध करते हैं। तो ये जो भक्तिरूप ठाकुर कहते हैं, ये जो असुर है शक्तासुर, ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? वो कहते हैं शक्तासुर दो अनर्थों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो है हमारे जो दो नहीं एक ही है, जो पुरानी बैड हैबिट्स हैं उनको ये जो असुर है शक्तासुर रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो पुरानी आदतें हैं जो हमें कृष्ण भावना से चुन करती हैं, दूर भगाती हैं, उन आदतों को छोड़ना हमारे लिए असहनीय है, उन बैड हैबिट्स ये शक्तासुर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ऐसे जो अनर्थ हैं पुरानी आदतें वो वास्तव में हमारे लिए भार हैं। जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि आपके सर के ऊपर बहुत बड़ा मुकुट या बड़ा कैप है, यदि वो सर कृष्ण के सामने नहीं झुकता तो वो सर क्या है, वो जो मुकुट है वो आपके लिए भार है, वो आपको नीचे की योनियों में ले जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक जो बैड हैबिट्स हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा भार है, बोझ है। इन बोझ को हमारे साथ हम लेते हुए कृष्ण भावना में आगे बढ़ना हमारे लिए असंभव हो जाता है। वो बैड हैबिट्स हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो इसलिए ये जो भार तो कम करना होगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बड़ा बड़ा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की है, समाज की है, देश की है, तो वास्तव में वो बढ़ता है। वास्तव में आचार्य कहते हैं ये बैड हैबिट्स रूपी भार को हमें उतारना है तो हमें एक भार को और उठाना पड़ेगा, वो क्या है, कृष्ण सेवा का भार। यदि हम कृष्ण सेवा का भार को उठाते हैं तो ये जो बैड हैबिट्स रूपी भार है वो हमसे उतरने लगता है, खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण सेवा का भार को उठाते हो तो क्या करते हैं, कृष्ण आपके भार को उठाते हैं, कृष्ण आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा का भार अपने जीवन में लेता है तो कृष्ण इस चीज को दूर करते हैं। और भार ये भी है, कृष्ण के पास उनकी सेवा के अलावा, शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ और हम आकांक्षा करते हैं, कुछ और प्रार्थना करते हैं, तो वो भी इस आसुरिक भार है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि एक जो बूढ़ी औरत थी वो जब जंगल गई, लकड़ी इकट्ठा की उसने, और लकड़ बहुत सारे इकट्ठा हो गए, उसको उठा नहीं पा रही थी अपने सर में, भगवान को प्रार्थना करने लगी कि भगवान आ जाओ, प्रकट हो जाओ, मुझे सहायता करो। भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा क्या करूं तुम्हारे लिए, ये जो भार है ना वो मेरे सर के ऊपर रखो। हमारी स्थिति वैसी है, मतलब शक्तासुर बने रहना चाहते हैं, भौतिक भार को ढोना चाहते हैं, ये जो बैड हैबिट्स है, गंदी आदतें हैं, और जिनके कारण हम अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको शिथिल करते हैं। तो ये है जो आसुर है शक्तासुर, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक है बैड हैबिट्स और दूसरा है आलसीपन, लेजीनेस। भगवद गीता में कहते हैं कृष्ण विगत ज्वरहा सारे कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए क्या करो, इन कार्यों को कर्तव्य या सेवा समझते हुए इसमें आप लग जाओ और आलस से रहित होकर इन कार्यों को करो। तो हम भी आध्यात्मिक जीवन में आलसी हो जाते हैं। भक्ति का मतलब ये क्रियाशीलता। तो प्रभुपाद बहुत सावधान रहते थे इस चीज के लिए। जैसे प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे तो वहां प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे तो वो प्रसाद महल के सामने से गुजरे, जहाँ वो पुराना प्रसाद महल है, सुलभ किचन, तो पहला किचन जो प्रभुपाद ने बनाया था वह प्रसाद बांटा जाता था। तो प्रभुपाद जब वहां से गुजरे एक दिन देखा कि वहां इतना सारा प्रसाद गिरा हुआ है, कल का प्रसाद, सारी गर्दनी पड़ी हुई है। प्रभुपाद के जो मैनेजर डिसाइपल्स थे, सब बड़े बड़े भक्तगण, उनको कहा ये क्यों नहीं सफाई हुआ मॉर्निंग समय में। तो प्रभुपाद को कहते ना, अभी वो सब लोग जप कर रहे हैं, कोई आना नहीं चाहता। प्रभुपाद ने कहा वो सारे रास्कर क्या जप करेंगे, इसको इस सेवा जप के नाम पर क्या कर रहे हैं, सेवा से दूर भाग रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने डांटा उनको। और फिर प्रभुपाद आगे जाते हैं, फिर और भी दो तीन स्थानों में हम वो देखते हैं उसी प्रकार की गंदगी। तो प्रभुपाद ने कहा ये उनका पहला कर्तव्य है, पहला कार्य है ना इस चीज को, और बहाना ना बनाए सेवा से दूर भागने के लिए। तो इस प्रकार से जो आलसीपन है आध्यात्मिक जीवन में जब हमारे पास आ जाता है, तो हमें समझना चाहिए शक्तासुर का, हमें शक्तासुर के अधिक से अधिक हमें कृपा मिल रही है। तो व्यवहारिक रूप से आप देखें तो कैसे गंदी आदतों को हम त्याग दें, हमारा हृदय बहुत अधिक भरा हुआ है। हाँ, तो आचार्यगण कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको खुद के प्रति विप्लव जागृत करना होगा। बस बहुत हो गया, अभी बहुत मुझे इन आदतों ने तंग कर दिया है। हाँ, काम क्रोध लोभ आदि ये आलसीपन, जब तक आप स्वयं इसके प्रति क्या कहेंगे, सही वर्ड क्या हो सकता है, विप्लव, विप्लव एक वर्ड है, दूसरा क्या, जागरूक हो जाना, रेवोल्यूशन ऐसे जागरूक हो जाना कि नहीं अभी बहुत हो गया, बहुत अभी मैंने माया के सेवा की, माया के विचारों में मग्न रहा, कृष्ण सेवा उससे बहुत अधिक दूर हो गया हो, अभी बस मुझे अभी शुरू करना है। तो जब आप तक आप ये स्टेप नहीं उठाओगे, तब वास्तव में कृष्ण सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि इन आसुरों को बाहर निकलने के लिए दोनों चीजें हैं, पहला है तो हम अपना कदम उठाए या रेवोल्यूशन लाए, और दूसरा है कृष्ण देखते हैं कि ये रियली चाह रहा है, कृष्ण सहायता करते हैं। हम उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े, अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए, उसको अपना संग बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, तब ये चीजें हमारे हृदय से निकलेगी। जैसे बिलमंगल ठाकुर है, बिलमंगल ठाकुर चिंतामणि के प्रति बहुत अधिक उनको लगाव हो गया था, आकर्षण हो गया था, उसके बिना उनको रहना असंभव हो गया था बिलमंगल को। तो लेकिन जब चिंतामणि के पास सारे चीजों को तोड़कर पहुंचे, वही चिंतामणि भगवद गीता का उपदेश देने लगे, कहने लगे तुम कितने पागल हो गए हो इस भौतिक देह को भोगने के लिए, इतना प्रयास, इतनी सिंसियरिटी कृष्ण को, कृष्ण प्राप्ति के लिए करते, तब अपने स्वयं आपका जो स्वरूप है वो हमको रिवील हो जाता, और चमक बिजली की जैसे उसके जो वर्ड्स है उनके मन में हृदय में क्रौं गए, और फिर वो निकल पड़े बाहर, ब्रज में निकलना है। फिर वो घर की तरफ नहीं गए, ना चिंतामणि की ओर। चैतन्य चरितामृत में बिलमंगल ठाकुर ने जो चिंतामणि का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि बिलमंगल ठाकुर ने उसको अपना प्रमुख गुरु स्वीकार कर लिया था, और अपना ग्रंथ कृष्ण करणामृत जो ग्रंथ बिलमंगल ठाकुर ने लिखा, इतना मधुर है कि कृष्ण को सुनने में बहुत आनंद लगता है, कृष्ण के कानों को जो अमृत महसूस होता है वो कृष्ण करणामृत है। तो ऐसे उसकी शुरुआत में वो चिंतामणि को प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरी वास्तव में सहायता हो, तुमने मुझे बचाया है। तो वो जाते हैं, जाते जाते हैं ब्रज की ओर, देखते हैं कि एक और युवती वो क्या कर रही थी, जल भर रही थी। उसको देखकर फिर से उनका हृदय उसके संग के लिए लालायित हो गया। फिर वो ब्राह्मणी थी, उसके पीछे पीछे उनके घर तक गए, जब घर के द्वार में पहुंचे वहां खड़े हो गए, वो अंदर गई, अपने पति को कहा कोई ब्राह्मण आया है, वो कुछ डिमांड कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि धर्म है अतिथि का सारी इच्छाओं की पूर्ति करना। तो वो बाहर गई उनसे पूछने के लिए, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ फिर से। तो उन्होंने उस स्त्री को कहा कि क्या करो तुम, मुझे तुम्हारे सर में जो हेयर पिन है, बालों में लगाने वाले पिन है, वो क्या करो दे दो। जैसे उन्होंने हेयर पिन को लिया और उन्होंने कहा कि अभी बहुत हो गया, बस उन्होंने तुरंत हेयर पिन से अपने आंखों में डाल दिया, आंखों को फोड़ डाला कि यही आंखें कारणीभूत थे भौतिक जगत के बंधन के लिए। और फिर हम देखते हैं पहला स्टेप उन्होंने उठाया और फिर भी ब्रज की ओर निकले तो कृष्ण अभी वो अंधे हो गए थे, कृष्ण तुरंत गाइड करते हैं, कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़ते हुए उनको लेके चलते हैं, ब्रज का भ्रमण करते हैं। हाँ, कृष्ण गाइड बने आपके वृंदावन यात्रा में तो कितना अमेजिंग है ना। तो यहाँ हम बेलबकल ठाकुर का हाथ पकड़ के ब्रज के वनों में भ्रमण करवा रहे हैं स्वयं कृष्ण। हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो बैड हैबिट्स है वो तभी हमारे हृदय से निकलेगी जब हम उसके विरोध में जागृत हो जाए और कहे कि बस हो गया अभी। और फिर हाँ क्या होगा, बेलमंगल ठाकुर की तरह कृष्ण हमारी सहायता करेंगे और फिर वास्तव में हम स्थित हो जाएंगे कृष्ण के स्मरण में, इतने अधिक स्थित हो जाएंगे जैसे बेलमंगल ठाकुर ब्रज में गए कुछ दिनों तक कृष्ण ने उनकी सहायता की। और फिर एक दिन ये सोचने लगे कि कौन ये बालक है जो मेरे मुझे ब्रज के वनों में घुमाता है, वो तो कहता है कि मैं तो ब्रजवासी हूँ, ग्वालवाल हूँ, लेकिन उसका स्पर्श, उसकी वाणी, उसके देह का सुगंध, इन सबको मैं महसूस करता हूँ तो लगता है कि ये सामान्य ब्रजवासी नहीं है, हाँ ये स्वयं कृष्ण हो सकते हैं। तो एक दिन बेलमंगल ठाकुर ने उनको पूछा कौन हो तुम, तो वहां उन्होंने हाथ पकड़ा था एक दिन सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा बताओ, उन्होंने पकड़ के रखा बताओ बताओ कौन हो आप। तो कृष्ण ने हाथ छोड़ा और भागे, बता नहीं रहे थे, बेलमंगल ठाकुर अंधे थे। उन्होंने कहा क्या आप मेरे हाथ को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन आप में सही में सामर्थ्य है तो आप मेरे हृदय से बाहर निकल कर देखो। इस प्रकार से ये जो शक्तासुर है वो इस दो प्रकार के अनर्थों को प्रकट करता है या रिप्रेजेंट करता है, एक है बुरी आदतें बैड हैबिट्स जो पूर्व के जो गंदे संस्कार हैं, और दूसरा है आलसीपन। आलसीपन को दूर करने के लिए क्या है, जिस चीज के लिए आप आलसी हैं उसे चीज को अपने आप जबरदस्ती लगाओ, है ना। जैसे आप भक्तों के संग करने में आलसी हैं, जप करने में आलसी हैं, सेवा करने में आलसी हैं, तो जिस चीज में आलसी है उसमें अपने आप को लगाओ जबरदस्ती, ये जो आलसीपन है हाँ निकल जाएगा, नेचुरली निकल जाएगा। लेकिन क्या करना होगा, आपको खुद उसके अगेंस्ट अपना जो युद्ध है उसको छेड़ना पड़ेगा। हाँ, हम तो वैसे रहना चाहते हैं, मेचे माया बसे खाचे वैसे खाबो दुबो भाई। हाँ, और भक्तिनाथ ठाकुर कहते कोतो निद्रा जाओ माया पिशा चिर कोले, कब तक इस आलसीपन आदि के गोद में सोते रहोगे, क्या करो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सुनो और एक्टिव हो जाओ। कृष्ण लीला बहुत शक्तिशाली मेडिसिन है। शुरुआत में ही परीक्षित महाराज ने कहा हाँ जो मुक्त जीव है वो वास्तव में इसका आस्वादन कर सकता है। कृष्ण लीला मुक्त जीव के आस्वादनीय वस्तु है, इसलिए भागवतम को जो पी सकता है, मोह रहो रसिका भूमि भाव का रसिक भक्त वह है जिसके हृदय में पूर्ण रूपे न प्रगाढ़ आसक्ति है कृष्ण के लिए, वही भागवतम को आस्वादन कर सकता है। हम बैठ के नहीं कह सकते कि मैं आजकल भागवतम का आस्वादन कर रहा हूँ, हम तो अपने अनर्थों का आस्वादन करते हैं, अनर्थ आस्वादन, उसमें हमें ज्यादा टेस्ट आता है, ज्यादा आनंद आता है। हाँ, तो ये कृष्ण लीला मुक्त व्यक्ति के लिए आस्वादनीय वस्तु है और हमारे लिए क्या है, दवाई है। और दवाई का मतलब है बिना किसी रुकावट के उस दवाई को रेगुलर पीना पड़ेगा। कोई डॉक्टर दवाई देता तो बताता है दिन में 3 टाइम लो, कान में 2 बार डालो, नाक में 1 बार डालो, आंखों में 4 बार डालो, तो मतलब वो नियम है। तो वैसे ही मेडिसिन को जो भी डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वैसे हमें लेना होगा। और ये इस भावना से इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि कृष्ण लीलाओं को पढ़ने के लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जैसे हम दवाई खाते हैं कि मैं बीमार हूं मुझे ठीक होना है, इस भावना से कृष्ण लीलास को पढ़ना चाहिए। और बीमारी क्या है? ये सारे आसुरों के जो अनर्थ है वो हमारे बीमारी है। इस एटीट्यूड से कृष्ण लीलाओं को हम पढ़ते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में वंडर अनुभव करेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कृष्ण लीला कितनी अद्भुत है, कितनी प्यूरिफाइंग है। और वास्तव में भगवत लीलाएं हमारे लिए बनी है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नित्य लीला सुखमाय सदा इस पुरुक मोर मने। हे कृष्णा, आपकी ये जो लीलाएं बहुत सुखमय है, हम सुख के लिए भाग रहे हैं, कहां कहां कितनी कितनी वस्तुओं में व्यक्तियों में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्य लीला सुखमय सदा इस पुरुक मोर मने कि हे कृष्णा, आपकी लीलाएं बहुत सुख देने वाली है, मेरे हृदय में मन में सदा स्फुरित हो जाए। तो हमारे लिए ये जो पाद लीलाएं हैं, जिस प्रकार से प्रभुपाद ने तात्पर्य में वर्णन किया है, उन लीलाओं को सुनना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। हम कृष्ण भावना में हैं तो हमें कृष्ण के बारे में पता ही नहीं रहता कि कृष्ण की एक्टिविटीज क्या है, कृष्ण के कार्यकलाप क्या है, तो इनको भी जानना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ विराम करते हैं। तृणावर्त का वर्णन करना था लेकिन समय के कारण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के कृष्ण कथामृत के जन्माष्टमी महामहोत्सव के नेताजी गौर प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की।